वर्ल्ड टी ट्वेंटी है 2020 में, लेकिन उसकी तैयारी शुरू होगी या इट्स वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया इन फ्लोरिडा। कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी और हम बात करने वाले हैं यहाँ दो ऐसी टीमों की जो हैं बड़ी धुरंधर। एक तरफ है वेस्ट इंडीज जिनके डीएनए में उनके ना वो ब्लड स्ट्रीम में टी20 बहता है, जो खेलने का इनका अंदाज है, जो खेलने का इनका तरीका है। 2016 का जो वर्ल्ड टी20 हुआ था उसके ये चैंपियन भी है, तो फिर ये वो टीम है जिससे आप थोड़ा बच के रहेंगे। इस टीम में बहुत बड़े बड़े विस्फोटक बल्लेबाज रहते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे आप वो एवन लुइस की बात कर लें, शिमरन हेटमायर की बात कर लें, आप निकोलस पूरन की बात करें, आप कारन पोलार्ड की बात करें, आप बात करें कार्लोस ब्रैथवेट की या फिर द्रे रस की, तो रसल द मसल अभी इस टीम का हिस्सा है। तो भैया बहुत ज्यादा फायर पावर है। एक नाम मिसिंग है, वो नाम है क्रिस्टोफर हेनरी गेल का। और यहाँ मैं थोड़ा सा हैरान रहता हूँ, परेशान रहता हूँ कि यार अभी तो वर्ल्ड कप आप खेल रहे थे, इसके बाद उन्होंने कहा मुझे कनाडा में ना वो टी20 लीग खेलनी है तो मैं उपलब्ध नहीं हूँ आपके लिए। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जब खिलाड़ी अपने आप को अनअवेलेबल बता दें तो दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। मतलब मैं समझ सकता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक समय पर आप वो फाइनेंशियल कॉज लेना चाहते हैं, एंड नोबडी विल डिसाइड फॉर व्हाट ही शुड डू, लेकिन थोड़ा दुख होता है कि आप कंट्री को छोड़कर एक लीग में खेल रहे हैं। खैर ये क्रिस्टोफर हेनरी गेल की कहानी है। गेंदबाजी अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की, तो फिर वहां थोड़ी सी कमजोरियां नजर आती हैं। हालांकि दो तीन गेंदबाज अच्छे हैं, ओशेन थॉमस वहां पे आपको मिलेंगे, वहां पे आपको शेल्डन कॉटरल भी आपको मिलेंगे, और वहां पे आपको सुनील नारायण भी मिलेंगे, लेकिन उसके बाद के जो दो तीन गेंदबाज हैं, जो छह गेंदबाज आप चाहते हैं, वहां पे आप बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को देखेंगे गेंदबाजी करते हुए, और दैट्स इंडियाज अपॉर्चुनिटी टू स्कोर। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम हमें कैसी लग रही है? लेट्स पिक एन 11। मतलब कोशिश करते हैं हम 11 खिलाड़ियों को पिक करने की कोशिश करते हैं, ये हम काम करेंगे हैशटैग आकाशवाणी पर। और रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन, इज देयर अ डाउट? मतलब वैसे देखा जाए आंकड़ों के आधार पर केएल राहुल का नंबर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए शिखर धवन से, क्योंकि अगर पिछले कुछ समय के हम टी20 आंकड़े निकाल कर देखें तो राहुल के आंकड़े बतौर ओपनर आर बेटर, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, धवन का वो शतक के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप खेला नहीं था, चोटिल थे, वापस आए, और लेट्स बी फेयर इन द लास्ट 18 मंथ्स इनका टी20 करियर है, कहीं नंबर जो है थोड़ा आगे की तरफ बढ़े हैं। तो आई विल गो विद हिम, साथ में होंगे सुपर हिट शर्मा। उम्मीद यही है कि जहां से वर्ल्ड कप छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे ये कैरेबियन दौरा, विच इज एक्चुअली ऑन रूट यूएसए, तो मतलब वो अमेरिका से होता हुआ जा रहा है। उसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली, रन मशीन को आप देखना चाहेंगे। हालांकि जब पिछली बार गए थे तो कोहली ने खुद ओपन कर ली थी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। केएल राहुल को मैं नंबर 4 पे रख रहा हूँ, तो नंबर 4 पे केएल राहुल, जो 4 पे भी अच्छा खेलते हैं, ऊपर भी अच्छा खेलते हैं, वो 3 पे भी खेल सकते हैं, लेकिन मेरी टीम में मैंने उनको 4 पे जगह दी है। आप बदल सकते हैं इस ओपिनियन को। और नंबर 5 पे मैंने रखा है, अब मैं ऋषभ पंत को रखना चाह रहा हूं, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम भी मेरे जहन में, और यहां मुझे एक कमजोरी नजर आती है भारतीय टीम में, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, तो फिर फिनिशर के रूप में आपके पास ऋषभ पंत तो मौजूद है, जिनको आप नंबर 5 पे रखेंगे या 6 पे रखेंगे, लेकिन अगर उनको आपने 5 पे रखा तो 6 पे खेलेगा कौन? मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को चुनना होगा, और दोनों ही फिनिशर नहीं है। तो अब आई एम स्लाइटली कंफ्यूज एंड स्लाइटली मैं उतना खुश नहीं हूं। मुझे लग रहा है इस टीम में एक कमजोरी है कि इसके पास वो लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के रूप में कोई खिलाड़ी है नहीं। तो मैंने पंत को 5 पे रखा, 6 पे मैंने रख दिया श्रेयस अय्यर को, मैंने नहीं रखा है 6 पे मनीष पांडे को, क्योंकि आईपीएल के अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे, जब जो ऊपर खेले हैं तो बेहतर खेले हैं, नीचे खेले हैं तो अच्छा नहीं खेले हैं। तो श्रेयस अय्यर, वेल मुझे लगता है कि बैटिंग ही नहीं आएगी, जो भी 6 पे खेलेगा उसकी बैटिंग आनी नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने रखा है जाडेजा को और कृणाल को। अब इन दोनों को मैं इसलिए खिला रहा हूं क्योंकि आपके पास बैटिंग के विकल्प नहीं है, कोई ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं है। वाशिंगटन सुंदर कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन वो भी तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रूप में स्पिनर खेलेंगे, लेकिन टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है। अगर मुझे नीचे ही खिलाना है तो फिर कृणाल पांडे और रविंद्र जाडेजा उनसे बेहतर विकल्प है। एक बार फिर वो बैलेंस की समस्या मुझे नजर आ रही है इस टीम में। भुवनेश्वर कुमार ऑफकोर्स माय बोलर, खलील को मैं जरूर खिलाना चाहता हूं, 11वां स्पॉट में किसको दूंगा? इसमें वो चाहर ब्रदर में से किसी एक को, राहुल चाहर, दीपक चाहर, डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। अगर स्पिनिंग सर्फेस लगता है तो तीसरा स्पिनर खिला लो, अगर फास्ट बॉलिंग के लिए थोड़ी मदद लगती है तो तीसरा फास्ट बॉलर खिला लो, और या फिर नवदीप सैनी, अगर आप एक और फास्ट बॉलर को खिलाना चाहते हैं। दीपक चाहर और नवदीप सैनी में से आप किसी एक को पिक कर सकते हैं। पर्सनली मैं चाहता नहीं हूं कि आप नवदीप सैनी को वो टी20 फॉर्मेट में डेब्यू करवाएं, मैं चाहता हूं आप वनडे में करवाएं ताकि उनके पास ओवर ज्यादा हो, लेकिन टीम के पास ये विकल्प रहेगा। और अगर मैं मैन टू मैन मार्किंग करूं तो बैटिंग में अगर गहराई के रूप में देखूं और वो मतलब हिटिंग एबिलिटी के रूप में देखूं तो वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है। अगर पूरे पांच बॉलर भारत खिलाता है तो भारत की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर जरूर हो जाती है, लेकिन चूंकि दो रिस्क स्पिनर्स नहीं है, बुमराह नहीं है, तो फिर भी मैं कहूंगा इवन स्टीवंस ही पहुंच जाएगा भारत का मुकाबला। कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकते हैं? लेट मी पिक वन एंड आई एम गोइंग विद निकोलस पूरन। मुझे लग रहा है पूरन अच्छा खेलेंगे, भाई पूरन के लिए मैं जा रहा हूँ। पूरन का अंत में विश्व कप भी अच्छा रहा था। मैच जीतेगा कौन? आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज। हो सकता है वेस्ट इंडीज यहाँ बढ़त प्राप्त कर ले और फिर भारत करे वापसी और फिर मजेदार हो जाए सीरीज। तो ये एक बात रहती है, तीन मैच की सीरीज हो ना तो पहला मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि जो जीता उसका पलड़ा मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और सामने वाली टीम जो है फिर दे प्ले टू नॉकआउट गेम्स। सो दैट्स द वे इट इज गोइंग टू बी। बट देन आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज शाम को क्रिकेट पे नजर आऊंगा और कल फिर मैं आपको नजर आऊंगा #आकाशवाणी कैस्ट्रोल एक्टिव आकाशवाणी इस मैच का रिव्यू करते हुए।